सूत्रधार पर सुनते हैं वेद व्यास की महाभारत।
आप सुन रहे हैं सूत्रधार प्रस्तुति वेद व्यास की महाभारत और मैं हूं आपके साथ आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा। आज हम शुरुआत करेंगे हमारे 10वें एपिसोड की। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या महाराज पांडु कुंती की सहायता से मातृ के गर्भ से संतान उत्पन्न करेंगे या नहीं। लेकिन उससे पहले चलिए लेते हैं एक छोटा सा रीकैप। पिछले एपिसोड में हमने युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन के जन्म की कथा सुनी। राजा व्यूषिताश्व की कथा सुनाने के बाद कुंती ने राजा पांडु को दुर्वासा ऋषि के बारे में बताया और साथ ही साथ यह भी बताया कि जब वह अपने पिता के घर थी तब दुर्वासा ऋषि उनके यहाँ अतिथि के रूप में आए थे। उस समय कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने कुंती को एक मंत्र प्रदान किया था जिसके माध्यम से वह किसी भी देवता को मोहित कर उससे पुत्र उत्पन्न कर सकती थी। यह बात सुनकर राजा पांडु बहुत खुश हुए। पुत्र की इच्छा रखने वाले महाराज पांडु ने कुंती से धर्म देवता का आवाहन करने को कहा। कुंती ने धर्म देवता का आवाहन किया और उनके तेज से युधिष्ठिर को प्राप्त किया। दूसरे पुत्र के लिए पांडु ने कुंती को वायु देव का आवाहन करके एक बलशाली पुत्र उत्पन्न करने के लिए कहा और इस तरह कुंती ने वायुदेव के तेज से भीम को प्राप्त किया। अब राजा पांडु एक पराक्रमी पुत्र चाहते थे जिसके लिए उन्होंने इंद्र को प्रसन्न किया और उसके बाद कुंती ने अर्जुन को जन्म दिया। राजा पांडु अभी और संतान उत्पन्न करना चाहते थे लेकिन कुंती ने उन्हें इस विद्या का प्रयोग करने की एक तय सीमा है ऐसा बताया। कुंती ने बताया कि इस विद्या से केवल 3 ही पुत्र उत्पन्न किए जा सकते हैं। आखिर में माद्री ने पांडु से कहा कि वह भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखती है और इसीलिए वह चाहती है कि पांडु कुंती से माद्री के पुत्र उत्पन्न करने की बात करे। अब जानते हैं आगे की कथा। माद्री की बात का उत्तर देते हुए राजा पांडु ने कहा, माद्री, यह बात मेरे मन में भी निरंतर घूमती रहती है लेकिन मुझे इस विषय में तुमसे कुछ भी कहने का साहस नहीं होता है क्योंकि मेरे मन में भी यह संदेह था कि तुम मेरी यह बात सुनकर प्रसन्न होगी या बुरा मान जाओगी। लेकिन आज तुम्हारे मुख से इस बात को सुनकर मेरा संदेह दूर हो गया है। मुझे विश्वास है कि कुंती मेरी बात अवश्य मानेगी। तब राजा पांडु ने अकेले में कुंती से यह बात कही, कुंती, जिस कार्य से मेरे कुल का कल्याण हो कृपया करके ऐसा कार्य करो, तुम माद्री को भी संतान सुख दे दो और उसका उद्धार करो। और कुंती ने ऐसा ही किया जिसके बाद माद्री ने मन ही मन कुछ विचार किया और अश्विनी कुमारों का स्मरण किया। तब उन दोनों ने आकर माद्री के गर्भ से 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। बड़े पुत्र का नाम नकुल और छोटे पुत्र का नाम सहदेव रखा गया। माद्री के दोनों पुत्र बुद्धिमान, रूप और गुणों से संपन्न थे। महाराज पांडु ने दोबारा कुंती से माद्री के गर्भ से संतान उत्पन्न करने के लिए कहा। तब कुंती ने पांडु से कहा, महाराज, मैंने माद्री को 1 पुत्र प्राप्त करने की आज्ञा दी थी लेकिन उसने 2 पा लिए। इसने मुझे ठगा है। दोबारा अपने तिरस्कार से मैं डरती हूँ। मैं ही मूर्ख थी जो समझ नहीं पाई कि 2 देवताओं के आवाहन से अवश्य ही उसे 2 पुत्र प्राप्त होंगे। अब आप मुझसे यह कार्य करने के लिए मत कहिए। मैं आपसे यही विनती करती हूँ। इस तरह महाराज पांडु के 5 पुत्र उत्पन्न हुए जो कि 5 पांडव कहे गए। मन में हंसते खेलते धीरे धीरे पांडव बड़े हो रहे थे। वन में रहने वाले सभी महर्षि पांडवों को अपने पुत्रों की तरह लाड़ प्यार करते थे। दूसरी ओर वसुदेव आदि सभी लोग सोचते थे कि उन्हें पांडु से मिलने का अवसर कब मिलेगा। एक दिन जब सभी वृष्णी वंशी बैठकर पांडु के विषय में ही बात कर रहे थे, तभी उन्हें पांडु के पुत्रों का समाचार मिला। समाचार सुनते ही सभी लोग हर्षित हो उठे। वृष्णियों ने वसुदेव जी से कहा, वसुदेव जी, हम नहीं चाहते कि पांडु के पुत्र संस्कारहीन हो, इसीलिए आप उनके पास किसी पुरोहित को भेज दीजिए। वसुदेव जी ने बहुत अच्छा कहकर पुरोहित के साथ उन सभी पांडु कुमारों के लिए अनेकों वस्त्र, आभूषण आदि भी भेज दिए। वहीं कुंती और माद्री के लिए दास, दासी, वस्त्र, आभूषण और अन्य उपयोगी सामान भेजे गए। उन्होंने उन सभी के लिए गायें और सोना चांदी भी भिजवाया। ये सभी सामग्री लेकर पुरोहित जी वन में आ पहुंचे। पांडवों के लिए जिन पुरोहित को नियुक्त किया गया था, उनका नाम था द्विजश्रेष्ठ काश्यप। पांडु ने पुरोहित जी का आदर सत्कार किया और विधि पूर्वक उनका पूजन भी किया। कुंती और माद्री ने प्रसन्न होकर उनकी बहुत प्रशंसा की। काश्यप जी ने पांडवों के सभी संस्कार संपन्न किए, जिसके बाद सभी पांडव वेदों के अध्ययन में लग गए और उसमें पारंगत हासिल की। श्रेयाति वंश के एक पुत्र थे जिनका नाम था शुक। वह अपने पराक्रम से शत्रुओं का विनाश करने वाले थे। एक समय में अपने धनुष के बल से उन्होंने पूरी पृथ्वी पर अधिकार पा लिया था। शुक ने अश्वमेघ यज्ञ जैसे 100 बड़े बड़े यज्ञ और देवताओं, पितरों की आराधना करके आखिर में शतश्रृंग पर्वत पर आकर तपस्या करना शुरू कर दिया था। उन्हीं तपस्वी राजा शुक ने पांडवों को विद्या देकर उनकी योग्यता बढ़ाई। उन्होंने सभी पांडवों को धनुर्वेद में पारंगत किया। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा पांडु पुत्र किस विद्या में पारंगत हुआ। युधिष्ठिर तोमर यानी के भाला फेंकने में पारंगत हुए, भीम गदा चलाने में पारंगत हुए, माद्री पुत्र नकुल, सहदेव ने ढाल और गदा चलाने की विद्या में महारत हासिल की। वहीं अर्जुन धनुर्विद्या में पारंगत हुए। अर्जुन को देखकर राजा शुक जान गए थे कि अर्जुन उन्हीं के समान महान धनुर्धर बन सकता है। उन्होंने प्रसन्न होकर शक्ति, खंड, बाण, तड़के समान विशाल और अत्यंत शंकीला धनुष और विपाट, शूर और नाराज आदि अर्जुन को दे दिए। इन सभी अस्त्रों शस्त्रों को पाकर इंद्रपुत्र अर्जुन बहुत खुश हुए। इस तरह जैसे जल में कमल बढ़ता है, उसी तरह कुरुवंश की भी वृद्धि होती जा रही थी। थोड़े ही वर्षों में मानो वे सभी दिव्य बालक सयाने हो गए थे। लेकिन काल का पहिया कुछ ऐसा घूमने वाला था जो जल्द ही इन सभी के जीवन को बदलने वाला था। आखिर ऐसा क्या होने वाला है जिससे कुरुवंश का समय बदल जाएगा? ये जानने के लिए आपको सुनना होगा हमारा अगला एपिसोड। उम्मीद है आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप इस एपिसोड से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है MySutradhar। साथ ही साथ ऐसी ही अनेक रोचक पौराणिक कथाओं के वीडियो देखने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी सूत्रधार ऐप। हमारी ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है। यहाँ आपको हर एक कहानी सुंदर चित्रण और सटीक फैक्ट्स के साथ मिलेगी। इसके अलावा आप श्री राम कथा, मिनी टेल्स पॉडकास्ट हिंदी और इंग्लिश, नल दमयंती प्रेम कथा हिंदी इंग्लिश तथा ऐसी ही अनेक कहानियाँ अपने मन पसंद ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। याद रखिएगा, हम हर सोमवार और शुक्रवार आपसे मिलते रहेंगे।